ग्रंथ में एक चैप्टर है शुद्ध वैराग्य, उसका वचन नंबर 60 पढ़ा जा रहा है। तमाम प्रकृति जाल विकारमयी खेदमयी और अज्ञानमयी स्वरूप है। तमाम प्रकृति जाल विकारमयी खेदमयी और अज्ञानमयी स्वरूप है। इसके उलट सत्स्वरूप आत्मा आनंदमयी ज्ञानमयी और अखंड शांतिमयी स्वरूप है। ऐसा यथार्थ निर्णय समझ करके अपने आप को प्रकृतमयी विकारों से पवित्र करके एक सत्स्वरूप के परायण बनाना चाहिए। यानी जब तक बुद्धि नाशवान शरीर के परायण हुई हुई है, तब तक शारीरिक विकारों से किसी पलक भी पवित्र और निर्बंध नहीं हो सकती। यह ही प्रकृति जाल अति कठिन है। इसको एक बार फिर सुने। तमाम प्रकृति जाल विकारमयी खेदमयी और अज्ञानमयी स्वरूप है। इसके उलट सत्स्वरूप आत्मा आनंदमयी ज्ञानमयी और अखंड शांतिमयी स्वरूप है। ऐसा यथार्थ निर्णय समझ करके अपने आप को प्रकृतमयी विकारों से पवित्र करके एक सत्स्वरूप के परायण बनाना चाहिए। यानी जब तक बुद्धि नाशवान शरीर के परायण हुई हुई है, तब तक शारीरिक विकारों से किसी पलक भी पवित्र और निर्बंध नहीं हो सकती है। यह ही प्रकृति जाल अति कठिन है। तो ये ईश्वर का विज्ञान, हमारा विज्ञान और ये बाहर की प्रकृति का विज्ञान, ये सारा इस वचन में आ जाता है। और बड़ा स्पष्ट दृढ़ है कि तमाम प्रकृति जाल, जितना भी आप बुद्धि से सोच सकते हो, इंद्रियों से अनुभव कर सकते हो, मन में मनन कर सकते हो, वो सारा का सारा प्रकृति जाल है। तमाम प्रकृति जाल विकारमयी, विकार जानते ही हैं हमको कि काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये 5 विकार हैं। कहाँ से आए हैं ये? ये 5 तत्व से आए हैं जो प्रकृति के अंदर मौजूद हैं, जिसको पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश कहते हैं। तो जो इस शरीर का मेटीरियल है, जो पूरे ब्रह्मांड का मेटीरियल है, वो ये 5 तत्व ही हैं। और इन 5 तत्वों के अंदर मेरा जो शारीरिक जीवन व्यतीत हो रहा है, किस रूप में, मुझको कोई डाउट नहीं है कि मैं कौन हूँ। मुझको पता है कि मेरा नाम है, मेरा रूप है, मेरा साइज है, मेरा वेट है, अर्थात शरीर ही मैं सब कुछ हूँ। इसके ऊपर एक सांसारिक व्यक्ति की कोई सोच होती ही नहीं। तो जो मटेरियल मेरे शरीर का है, वही मटेरियल संसार का भी है। तो इस हर जो वस्तु होती है या हर जो मटेरियल होता है, उसका गुण होता है, उसके दोष होते हैं। तो जो गुण है या दोष है, ये 5 तत्व के 5 विकार करके ये विज्ञान अध्यात्म विद्या बता रही है कि काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये 5 अवगुण हैं या विकार हैं जो प्रकृति के अंदर मौजूद है। इसका अर्थ ये हुआ कि मेरा यदि सांसारिक जीवन कितना भी अच्छा क्यों नहीं है, सारी दुनिया में तुलना कर ली है, कोई कहे मैं सर्वश्रेष्ठ इंसान हूं, लेकिन उसका है प्राकृतिक जीवन, याद रखिए पूरा का पूरा जीवन उसका 5 विकार के अंतर्गत ही आता है। वो दान भी करेगा तो दान का भी अहंकार कर लेगा, अर्थात दान करके भी अपने अहंकार के विकार को और बढ़ा लेगा। इसलिए उसके सांसारिक दृष्टि से अच्छे कर्म भी विकार पैदा करने वाले हो जाते हैं। जो इसको विज्ञान को नहीं समझते, वो कंफ्यूज हो जाते हैं। जो समझते हैं उनको पता है। तो कह रहे हैं कि तमाम प्रकृति जाल विकारमयी, और जब विकारमयी है अर्थात वो डिजीज है, तो फिर क्या देगा आपको? प्रसन्नता देगा क्या? प्रसन्नता नहीं देगा। वो कह रहे हैं खेदमयी, अर्थात मनुष्य के जीवन में वो बेचैनी ही पैदा करनी है, उसके जीवन में उसको पतन का ही दर्शन कराना है, इसलिए वो खेदमयी है। और अज्ञानमयी स्वरूप है। जो असलियत है संसार की, जो असलियत है शरीर की, जो असलियत है सारे ब्रह्मांड की, उसका उसको ज्ञान ही नहीं होता। वो कहता मेरा शरीर चल रहा है, ये नहीं सोचता शरीर तो निरंतर हर साल जैसे आयु बढ़ रही है शरीर ही बढ़ रहा है। शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार की चेंजेस हर आयु के हिसाब से आ जाती है, उसके अंदर ऑटोमेटिकली आ जाती है। तो बताइए कि मां के द्वारा मेरे शरीर का जन्म हुआ, लेकिन क्या गर्भ के अंदर मां ने मेरा पालन किया? क्या मैं पल रहा हूं मां पालन नहीं कर रही? जब मैं संसार में आता हूं तब मां मुझको दूध पिलाती है, खाना खिलाती है, मेरी केयर करती है, तब मां के अंदर ये होश आता है या अहंकार आता है कि मैं अपने बच्चे का पालन खुद कर रही हूं, कि गर्भ में भी मैं पालन कर रही हूं, ऐसा अहंकार आता नहीं है। कंफ्यूज तो हो सकता है इंसान। तो जो गर्भ में जिसने पालन किया है, वास्तव में तो पालन करता मेरा वो है। तो बताइए कि मेरे बारे में कितना बड़ा सत्य है कि मेरा पालन प्रभु ने ही स्टार्ट किया, उसी ने ही मुझको जीवित जो है वो संसार में लाया। उसके पश्चात दुनिया वाले उसकी केयर करते हैं, अंदर तो कोई केयर नहीं करता। और सत्य यह है कि बाहर आने के पश्चात भी आप श्वास खुद नहीं लेते हो। कोई कहता कि मैं श्वास लेता हूं, श्वास लेते नहीं हो, श्वास आती है। आप दिल आप धड़काते नहीं हो, दिल आपका धड़कता है। और हर अंग में देखिए कितनी छोटी छोटी नाड़ियां हैं, कितनी बारीक नाड़ियां हैं, जो सारी ब्रेन से आपके मस्तिष्क से सारे शरीर में फैली हुई है। और हर अंग का ठीक ठीक संचालन हो रहा है। कोई भी नाड़ी यदि आपकी ठीक काम ना करे तो जिस ऑर्गन को वो चला रही है वो ऑर्गन फेल हो जाता है। आपका गुर्दे फेल हो सकते हैं, हार्ट फेल हो सकता है, कोई भी अंग आपका फेल हो सकता है, आपको श्वास आना भी बंद हो सकती है। तो सारा नाड़ियों का खेल है। और नाड़ियां सारी कहां है? ब्रेन के अंदर है, मस्तिष्क में। तो मेरे शरीर का विज्ञान यदि कोई सीख भी ले धीरे धीरे करके, लेकिन इस विज्ञान को तैयार किसने किया? वहां तो मेरी सोच ही नहीं। मैं अहंकार करता हूं कि मैंने देखो दिमाग में ये क्रिया हो रही है, ये कैसे हो रही है मैंने पता लगा लिया। तुमने तो पता लगा लिया है कैसे हो रही है, लेकिन जैसे वो हो रही है वो किसने किया? उसमें तो मनुष्य कोई रोल ही नहीं। तो मेरे शरीर का अस्तित्व बिना ईश्वर के हो ही नहीं सकता। इसीलिए पूरी सृष्टि का, मेरे शरीर का अस्तित्व खुद ईश्वर ही है। ईश्वर के अलावा दूसरी सत्ता मेरे अस्तित्व में शामिल नहीं है। तो जिसके कारण मेरा अस्तित्व है, जिसके कारण मेरा जीवन है, उसकी तो मैं याद ही नहीं करता, क्योंकि मैं अज्ञानियों के बीच में पला हूं। इसीलिए ईश्वर के विज्ञान को मैं उसकी जरूरत भी नहीं समझता। जीवन तो आपका चलता है। क्यों चलता है? क्योंकि शरीर जब पैदा होता है अपना प्रारब्ध लेकर पैदा होता है, और उस प्रारब्ध का आपको तो कोई पता ही नहीं होता। उस पूरे प्रारब्ध की चाबी ईश्वर के हाथ में ही रहती है। इसलिए आप चाहे कोई भी विद्या पढ़ लीजिए, कुछ भी क्यों ना कर लीजिए, लेकिन प्रारब्ध को आप नहीं बदल सकते। जो प्रभु ने जन्म लेते ही फिक्स कर दिया, वैसा ही शरीर जो है संसार में उसका वक्त बीतेगा। तो अब बताइए कितना बड़ा विज्ञान मेरा आज भी है, लेकिन है उसकी चाबी प्रभु के हाथ में, लेकिन मैं तो प्रभु को याद तक नहीं करता। तो वो प्रभु जो निराकार है, जो दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन वही मैं जो गलतियां कर रहा हूं, क्योंकि मेरे मालिक वही है ना, तो मेरी केयर भी वही करेंगे, मुझको जिंदा भी वही रखेंगे, और मुझको मारेंगे भी वही। लेकिन शरीर मिलने के साथ साथ प्रभु ने मुझको बुद्धि भी तो दी। बुद्धि में जो ज्ञान है, जिसको हम अध्यात्म विद्या कह देते हैं, बुद्धि में जो ज्ञान है उसका इंतजाम भी तो प्रभु ने ही किया। अब ये समता विलासी जब लिखी गई तो महाराज जी क्या लिख रहे हैं शुरू में, देखिए विषय सूची में वो कह रहे हैं, प्रथम अनुभव, द्वितीय अनुभव, तृतीय अनुभव, चतुर्थ अनुभव। ये क्या है अनुभव? अनुभव का अर्थ होता है अनु माने अनुसार, भव माने हो जाना। जो मनुष्य प्रभु के अनुसार ही हो जाए, जिसको हम अवतार कह देते हैं, जिसको हम सतगुरु कह देते हैं, उसकी बुद्धि प्रभु के साथ एक हो गई है, इसीलिए केवल वही अनुभव कर सकता है। तो अब ये जो ज्ञान आ रहा है ये अनुभवी ज्ञान है। अनुभव का मतलब बुद्धि जब ईश्वर के साथ एक हो गई तब ये ज्ञान उसके हाथ से लिखा जा रहा है या मुंह से बोला जा रहा है, ये दोनों ही कर्म इंद्रियां हैं। अब प्रभु इसका मालिक है, चाहे वो आपके मुंह का इस्तेमाल कर ले, चाहे आप उसके उंगलियों का इस्तेमाल कर ले, वो लिखवा भी सकता है आपसे, उसको बुलवा भी सकता है उसको। तो इसलिए वाणी आ रही है, समाधि में आ रही है। देखिए जब लिखा जा रहा है समाधि नहीं है, लेकिन इस हाथ का चार्ज, इस बुद्धि का चार्ज प्रभु के हाथ में है, इसलिए महाजी इसको अनुभव करके लिख रहे हैं। राइटर नहीं है इसके, वो ये अनुभवी ज्ञान है। अर्थात यहां मिस्टेक की 0.1% भी कोई संभावना नहीं है। जो प्रकृति का अटल सत्य है, अटल सिद्धांत है, वही इसमें इस ज्ञान के रूप में, इस शास्त्र के रूप में प्रकट हुआ है हमारे कल्याण के वास्ते। तो ऐसा ज्ञान जब लिखित में मेरे सामने आ रहा है, उसको मैं पढ़ने की समझने की कोशिश तक नहीं कर रहा हूं। मेरी बुद्धि में यह विचार तक नहीं आ रहा है कि प्रभु ने मेरे लिए यह भेजा है, मेरे कल्याण के लिए भेजा है, मेरे फायदे के लिए भेजा है, और मैं इसकी जरूरत तक नहीं समझ रहा। घर के लोग अज्ञानी, समाज के लोग अज्ञानी, उन अज्ञानियों के बीच में पलकर मैं अज्ञानियों की नकल करके अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहा हूं। बर्बाद क्यों? क्योंकि कह रहे हैं कि यह तमाम प्रकृति जाल विकारमयी, खेदमयी और अज्ञानमयी स्वरूप है। याद रखिए, इस संसार में जितनी भी प्रगति करोगे, आप अपने पांच विकार की प्रगति करोगे। आज या तो अहंकार बढ़ा लोगे, ज्यादा पैसा कमा के ज्यादा वस्तुएं इकट्ठी करके लोभ बढ़ा लोगे, कोई पांच विकारों एक एक करके बढ़ा लोगे। जिसको आप विकास करके देख रहे हो वही तो आपका पतन है। तो अध्यात्म विद्या मैंने पढ़ी ही नहीं, ईश्वर की जरूरत मैंने कभी जीवन में समझी ही नहीं, मैं एक अहंकारी बनके, एक अज्ञानी बनके संसार में विचरता रहा। इसीलिए आपने जितना भी संसार में पुरुषार्थ किया है, जिस दिन भी आपके अंदर सतबुद्धि आएगी, सतविचार बुद्धि एक्सेप्ट करेगी, सीख लेगी, उसी दिन आप इस रहस्य को समझ पाओगे कि मैंने पूरा जन्म तो पांच विकार की कमाई की है। काम बढ़ाया है, क्रोध बढ़ाया है, लोभ बढ़ाया है, मोह बढ़ाया है, अहंकार बढ़ाया है। तो इसीलिए मनुष्य जो संसार में जितनी ज्यादा प्रगति करता है, उतना ही ज्यादा संसार में वो फंस जाता है। ऐसा फंसता है कि उससे निकलने के सारे रास्ते ही बंद हो जाते हैं। तो अब बताइए, हम उसकी नकल करते हैं, वो अपने अंदर के दर्द को नहीं शेयर करता आपके साथ, वो तो यही दिखाएगा कि मैं देखो कितना सफल इंसान हूं, लेकिन अंदर से दिल जानता है कि मैं कितना बंधा हुआ। मुझे तो परिवार के साथ वक्त दो घंटे व्यतीत करने के लिए फुर्सत भी नहीं मिलती, मेरी हाल ही है। पैसा कमा भी लिया, नाम कमा भी लिया, सुख लोग देखते हैं बड़ा सुखी है, लेकिन मेरे पास सुख होने का समय नहीं। तो इसीलिए जो नकल करके जो हम विकास करते हैं, ये महाजी कह रहे हैं प्रेमी, ये अंधा विकास है। इसी को भोगवाद कहते हैं, इसी को मेटेरियलिज्म कहते हैं, और ये मनुष्य के जीवन को पूरा का पूरा बर्बाद कर देता है। इसकी बुद्धि सो ही जाती है। इसीलिए बड़े बड़े देश के राष्ट्रपति देखे ऐसी ऐसी स्कीम बनाते हैं कि दूसरे देश कैसे बर्बाद कर दे ताकि हम वर्ल्ड के लीडर बन जाए। ये इंटरनल प्लानिंग बड़े देशों की चलती है, जो सबसे ज्यादा बुद्धिमान है, सबसे ज्यादा रिसर्च है जहां हुई है। तो अब बताइए, कहते हैं कि विश्व में सबसे ज्यादा जो शस्त्र बनते हैं वो अमेरिका में बनते हैं, और पूरे वर्ल्ड मार्केट में जो एक्सपोर्ट है इन शस्त्रों का वो अमेरिका का ही है। तो अब बताइए, नाश का सामान तैयार करता है, नाश का सामान ही दूसरों को बेचता है, और नीति क्या होती है, कैसे दो राष्ट्र लड़े ताकि मेरी इनकम बढ़ जाए। बैकग्राउंड में प्लानिंग यह होती है। तो जिस प्रकृति को, जिस संसार को हम विकास करके देख रहे हैं, विकास के मॉडल करके देख रहे हैं, वो तो बर्बादी का क्षण है। तो मैं आंख बंद करके लोगों की नकल करके आगे बढ़ जाता हूं, प्रगति करता हूं। सत्य यह है कि मैंने अपनी कब्र का गड्ढा खुद ही खोद लिया है, और कोई क्या खोदेगा मेरे। इसलिए याद रखें, यदि आपके पास सतबुद्धि है तो आप विचार करके देख लो। किसी अमीर आदमी का जीवन पर्सनली जानते हो तो उसका एनालिसिस करके देख लो, आप पाओगे कि आपकी इनकम यदि 50,000 रुपये महीने की है, उसकी यदि 50,00,000 रुपये महीने की है, तो आपसे कितना ज़्यादा बेचैन है वो, ये आपको पता लग जाए। यदि सही सही एनालिसिस करोगे उसके जीवन को जानते, सत्य यही है। तो इसीलिए जो ये वचन कह रहा है कि तमाम प्रकृति जाल विकारमयी, खेदमयी और अज्ञानमयी स्वरूप है, इसके उलट सत्स्वरूप आत्मा आनंदमयी, ज्ञानमयी और अखंड शांति स्वरूप है। तो ये गुण इस आत्मा के हैं, जिस ईश्वर के हैं, जो मेरे अंदर है। मेरी बुद्धि उधर जा ही नहीं रही है, मेरी बुद्धि ये विकारों की तरफ जा रही है, अज्ञान की तरफ जा रही है। तो मेरी क्या दशा होनी है आप खुद ही कल्पना करके देखो। ऐसा यथार्थ निर्णय समझ करके अपने आप को प्रकृतमयी विकारों से पवित्र करके एक सत स्वरूप के परायण बनाना चाहिए। जिस समय इस प्रकार में इस समय मैं देह परायण हूं, अर्थात मैं देह हूं, ये मेरा विश्वास है, ये मेरा ज्ञान है। जब देह हूं तो देह करके जो मैं संसारी जीवन सुख प्राप्ति के लिए व्यतीत कर रहा हूं वो मेरा संसारी जीवन है। और ये जीवन जो है कैसा है, विकारमयी है, खेदमयी है, अर्थात आपके जीवन में ये भविष्य का दुख पैदा करेगा, बेचैनी पैदा करेगा और अज्ञानमयी। इसमें ज्ञान की तो कोई चीज ही नहीं है। जिससे जीवन बिगड़े आपका वो ज्ञान वाला जीवन है या अज्ञान वाला जीवन है? एक छोटा बालक एक बार मैगी अच्छी लग जाती है उसको, तो रोज मैगी खाता है वो, माँ उसको चुप कराने के लिए मैगी दे देती है। लेकिन विचार करो कितने शौक से खा रहा है और माँ भी उसको दे रही है, लेकिन जब विचार की आंख से देखोगे कि इसके पेट का क्या हाल होगा। जो चीज उसको प्रिय लग रही है, जो उसको सुख दे रही है, उसके पेट का क्या हाल होगा। तो वो मैगी उसको खुश कर रही है, उसका विकास कर रही है या उसको बर्बाद कर रही है। तो हमारी सारी कमाई, सारा जो वे ऑफ लाइफ है वो इसी प्रकार की है कि हर साल हम अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं और संसार की नकल करके ये समझ रहे हैं कि मैं तो प्रगति कर रहा हूं, मेरा तो भविष्य का बड़ा सुखी जीवन होगा, मेरा परिवार का भी बड़ा सुखी जीवन। तो याद रखिए, ये विज्ञान है, ये प्रभु के हाथ से लिखा गया है, या यूं कहिए प्रभु के द्वारा लिखवाया गया है। तो ये विज्ञान यदि मैं इस प्रकार से नहीं सीखता, इसको समझ करके प्रभु के द्वारा दिया गया है, इसलिए इसी में, इसको जानने में मेरा कल्याण है, इसके अनुसार जीवन व्यतीत करने में मेरा कल्याण है, तब जाकर जब मेरे अंदर निश्चय आता है सत्संग के द्वारा, स्वाध्याय के द्वारा या ऐसे लोगों की संगति के द्वारा, तब मैं अपने जीवन को एक मोड़ देता हूं, मेरे जीवन में एक बदलाव आता है। इस सत विचार के अनुसार मैं अपने दैनिक जीवन को बनाने की कोशिश करता हूं। जो लोग भी उस पर आगे बढ़ जाते हैं उनको पता होता है कि पहले मन में कितनी बेचैनी रहती थी, आज उसके मुकाबले में कितनी शांति है। इसीलिए जब हम सत्पुरुषों के वचन को सीखते हैं तो होता क्या है इसका इफेक्ट मेरे ऊपर, मेरा जो राग है, जो मन के अंदर संसार के सुख के संकल्प होते हैं, उसको अपने ज्ञान इंद्रियों कर्मेंद्रियों के द्वारा पूर्ण ही तो करते हैं। इसी को राग कहते हैं। जो संसारी चीज पसंद है या अच्छी लगती है उसके लिए कोशिश करना, उसके लिए समय व्यतीत करना, इसका नाम राग है, अटैचमेंट है। तो ये राग ही तो पांच विकार के साथ है। ये संसार का पूरा जीवन पांच विकार के अंतर्गत है, इससे 1% भी ऊपर नहीं। तो ये राग है, ये राग मेरे जीवन को बर्बाद कर रहा है। तो इसके साथ क्या चाहिए फिर? ये विवेक चाहिए मुझे, ये ज्ञान चाहिए। तो जब ये विवेक आता है तब ये जो राग है ना, ये वैराग्य में कन्वर्ट हो जाता है। जिस चीज का अट्रैक्शन आपके जीवन में इतना ज्यादा था, अब जब समझ आती है अरे ये तो खाना मुझे कैंसर पैदा कर देगा, तो उसका राग टूट जाता है। आपके तो स्वाद ज्यादा जरूरी चीज नहीं है, जीवन ज्यादा जरूरी चीज। तो प्रभु तो आपके प्राण है, वो तो आपका जीवन है, उसके बिना तो आपका अस्तित्व ही नहीं है। तो उस प्रभु को छोड़कर मैं मिट्टी को पकड़े, मटेरियल को पकड़े बैठे हुआ हूं। तो जब आपके अंदर विवेक आता है तो उसके साथ इन राग के प्रति वैराग्य आता है। इसलिए बुद्धि जिसमें चेतना है, जो ईश्वर का अंश है, इसलिए यह बुद्धि उस राग से मुक्त होने की कोशिश करती है। और वैराग्य क्या काम करता है? वैराग्य के साथ तीसरी चीज आती है, क्या? प्रभु की भक्ति। तो जिस मन में, जिस बुद्धि में वैराग्य आएगा, उसका क्या फिर होगा? प्रभु के प्रति अनुराग पैदा होगा। वो वैराग्य उसके अंदर अनुराग पैदा करता है। और जब ये सत्पुरुषों की बात समझ आती है तो ये बुद्धि अपने निर्णय को बदल देती है कि मैंने अज्ञानियों के बीच में पलकर अपनी जिंदगी बर्बाद की है, अब मैंने एक दिन भी अपना खराब नहीं करना है। अब जो गुरु है, जो शरीर रूप में प्रभु है, जो संसार पे आए, अवतार लेकर आए, उनके द्वारा शास्त्र की रचना हुई, उनके द्वारा हम जीवों का, हम मनुष्यों का मार्गदर्शन हुआ, अब मैंने उस गुरु के अनुसार अपने जीवन को बनाना है। तो वो कहते हैं कि संसार का सिमरण करने के बजाय तू दो वक्त प्रभु का सिमरण क्यों नहीं करता? लेकिन प्रभु का सिमरण करते हैं तो बुद्धि हमारी बेचैन हो जाती है। क्यों? कि बुद्धि में संसार के संस्कार है। दिन में कोई काम बिगड़ गया, उसकी याद आएगी। काम बिगड़ गया, कोई मेरा नुकसान हो गया, तो ईश्वर की याद आएगी कि मुझे किसी ने मुझे कोई गाली दे दी, मेरा अपमान कर दिया, सारा मेरे प्राण तो उसमें पड़े हुए हैं। प्रभु की याद करने बैठूंगा तब भी याद नहीं होगी। इसीलिए ये जीव फिर ईश्वर परायणता धारण करता है। ईश्वर परायणता क्या है? कि ईश्वर के लिए मैंने जीना है, ईश्वर ही मेरा जीवन है और ईश्वर ही मेरी मंजिल है। तो ये बुद्धि इस देह का अहंकार, देह का मोह त्याग करके ये प्रभु के प्रेम में, प्रभु के निश्चय में फिर रहती है। इसीलिए ये प्रेम से प्रभु का सेवन करना चाहती है। तब इसको कहा जाता है तू कारण करता प्रभु को समझ, क्योंकि तेरे जीवन में जो सुख आएंगे, दुख आएंगे, प्रभु हुक्म से आएंगे, प्राप्त के अनुसार आएंगे, इसलिए तूने उसमें घबराना नहीं है। उसको, उसका कारण करता तूने प्रभु को समझा, अर्थात तेरे बुद्धि में समर्पण भाव प्रभु के प्रति आता है, तब ये बुद्धि दुख के साथ भी या दुख के कारण भी बेचैन नहीं होती। सिमरण करते वक्त ये प्रभु के प्रेम से याद करने में सफल हो जाती, तब जाके पता लगता है कि जब बुद्धि का ये स्टेटस बनता है, उसके अंदर स्ट्रेंथ आ जाती है ईश्वर प्रायता धारण करते करते, तब अंतर्यामी ईश्वर का उसको अनुभव होने लगता है। तब पता लगता है कि ईश्वर कैसे आनंदमयी है, कैसे ज्ञानमयी है और कैसे अखंड शांतिमयी है। तब जाकर हमारा ये मानव जीवन सफल होता है। इसलिए इस वहम को छोड़कर कि मैं देह हूँ और देह के सारी क्रियाएं करके संसार में सफल होके मेरा जीवन सफल हो जाएगा, याद रखें यही तेरी विफलता का मार्ग है। तेरी बुद्धि अज्ञानी है, संसारी के बीच में तू पला है, इसीलिए तू समझ नहीं रहा है। जो तेरी बर्बादी का रास्ता है उसको तू प्रगति करके देख रहा है, इसलिए उसको समझकर तू अपने वास्तविक प्रगति के मार्ग को समझ, जो ईश्वर का मार्ग है, आनंद का मार्ग है, ज्ञान का मार्ग है, शांति का मार्ग है। इसलिए वो रास्ता सिमरन से होकर जाता है, संयम से होकर जाता है, और ये जो सत्संग का विचार है या असत विचार है इससे होकर जाता है। इसलिए इस पर मेहनत करें और अपने वक्त को बचाने की कोशिश करें। ओम सत्यम सर्वम।